ओम शांति। यूरोप की एक लेखिका एनी डिलार्ड, उसने किताब लिखी कभी टीचिंग अ स्टोन टू स्पीक, और उस किताब में उसने एक कहानी का वर्णन किया है। वो कहानी है 1845 की, और उसने कहा कि धरती का जो उत्तरीय ध्रुव है, जहां पर आर्कटिक ओशन है, इसकी खोज करने के लिए एक अभियान पर दो जहाज निकले थे 1845 में ब्रिटेन से, और इसको नाम दिया गया था द आर्कटिक एक्सपीडिशन, अर्थात आर्कटिक ओशन जो ऊपर है उसका अभियान, एक खोज यात्रा। और दो जहाज थे उसमें, लगभग 138 लोग थे क्रू मेंबर्स, और उनका जो कप्तान था वो था, और वो लोग निकल पड़े थे। ये अभियान को लगभग 2 से 3 साल लग सकते थे, पर वो जो कप्तान था और वो जो टीम थी, उन्होंने इसे बहुत ही हंसी मजाक में लिया और बहुत लाइटली लिया, और बहुत सारी चीजें साथ में ली, पर कोयला जो लिया, जो ये जहाज को चलाने के लिए था, वो केवल 12 दिन का लिया था, और 1200 किताबें ली थी लाइब्रेरी की पढ़ने के लिए, लंबी यात्रा थी, पर जितनी तैयारी करनी चाहिए थी जाने की उतनी नहीं की, और वो लोग निकल पड़े इस अभियान में। और जैसे जैसे उनके जहाज, उनके दो जहाज आगे बढ़ते गए, उत्तरी ध्रुव में ठंड बढ़ती गई। वहां पर जो समुद्र था लगभग बर्फ जैसा था, और उनको इसका कोई अंदाजा ही नहीं था इस समय 1845 में कि ऐसा भी हो सकता था। थोड़ी जानकारी थी कि ठंड बहुत है, पर इतना नहीं पता था कि वहां जाने के बाद ऐसा समय आएगा कि हमारी जो जहाजे है वो रुक जाएगी, सब जगह पर बर्फ जमा होने लगी। उनके पास जो कपड़े थे, अपनी नेवी के कपड़े थे, वो स्कार्फ, वो नीला ड्रेस, इस तरह के कपड़े थे, वो कोई सर्दी वाले कपड़े उनके पास नहीं थे। और वो जहाज जैसे जैसे बढ़ते गए, ऐसे ऐसे बढ़ते गए कि एक समय आया कि दोनों जहाज फंस गए, सभी तरफ से बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, और वो फ्रीज होने लगे एक एक करके। और तब चिल्लाना चालू किया, तब ढूंढना चालू किया, मदद के लिए पुकारा, परंतु कोई मदद नहीं आई कहीं से भी, कोई भी मदद नहीं आई। और वो सारे के सारे लोग, 138 जितने लोग थे, वो सब के सब मर गए उस यात्रा में, और उनकी लाशें वहां बिछी हुई मिली। बहुत सारे सालों तक उनको ढूंढा गया, कोई खबर नहीं थी कहां चले गए। लगभग 20 साल के बाद सब पता चला, वो सब दिखे वहां पर, उनके कपड़े दिखे, उन्होंने जो जो चीजें साथ में ली थी, वो दारू की बोतल और बहुत सारी जो चीजें थी अपने आप को गर्म रखने के लिए। परंतु इस लेखिका ने अपनी किताब में कहा, टीचिंग अ स्टोन टू टॉक किताब का नाम है, उस किताब में उसने कहा ये जो आर्कटिक एक्सपीडिशन था, अभियान था आर्कटिक वाला, ये बहुत बुरी तरह फेल हो गया। और उसका एक मुख्य जो कारण था वो था कि वो जो कप्तान था फ्रैंकलिन नाम का, उसने जाने से पहले प्रिपेरेडनेस, जिसको कहते हैं तैयारी, वो नहीं की थी। जितनी जानकारी उसको चाहिए थी बहुत उसको आसानी से लिया, बहुत हंसी मजाक में लिया, सोचा चलो मौज मस्ती करने जाते हैं, इस तरह से लिया और वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फ्रीज हो गए और सब के सब मर गए, कोई भी नहीं बच पाया। जितने लोग थे वो सारे के सारे क्लास समाप्त हो गए। तो उसने लिखा कि ये हुआ, इसका कारण क्या था? तैयारी नहीं थी। तैयारी करनी चाहिए थी। कहीं पर भी इतने बड़े अभियान में कोई निकल रहा है तो क्या चाहिए? तैयारी चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए। नहीं तो जो हालत इस आर्टिक एक्सपीडिशन की हुई वही सबकी होगी। संडे की मुरली, कुमारों से मुलाकात, क्या कहा बाबा ने कुमार? बीमारी आ जाए उसके बाद में फिर बुखार आ गया, उसके बाद में फिर दवाई ली और तब तक घूमते फिरते रहे, इसको बाप दादा समझदार नहीं कहते। इसका मतलब बाबा दवाई लेने के लिए कह रहे और रेस्ट करने के लिए भी कह रहे। अगर जिसको पता चल गया बीमारी आने वाली है पहले से ही दवाई कर लेता है और अपने आप को ठीक कर लेता है। लोग कहते हैं हम दवाई क्यों ले, शक्ति से योग बल से ठीक करेंगे अपने आप को, पर भगवान खुद ही कह रहा है कि समझदार वो है जो बीमारी आने से पहले ही जान ले, समझ ले बुखार आने वाला है और दवाई लेके अपने आप को ठीक कर लेते, रेस्ट कर लेते। परंतु जो घूमता फिरता रहता है बुखार में भी सेवा चालू है, वो क्या होगा? उसको बीमारी पकड़ लेगी। तो समझदार इसको नहीं कहते। समझदार अर्थात स्पिरिचुअल प्रिपेरेडनेस, अंग्रेजी में शब्द है स्पिरिचुअल प्रिपेरेडनेस। प्रिपेरेडनेस अर्थात तैयारी, आध्यात्मिक तैयारी। कोई भी बड़े अभियान, किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए जब कोई व्यक्ति निकलता है तो सारी चीजों की जानकारी चाहिए। मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आएगी। तो कुमार अर्थात सबसे पहली परिभाषा क्या दी बाबा ने? शक्तिशाली। और शक्तिशाली अर्थात नॉलेजफुल, और नॉलेजफुल अर्थात रचता के ज्ञानी, रचना के ज्ञानी और माया के भी ज्ञानी। माया कब आएगी, कैसे आएगी, कहां से आएगी, किसके द्वारा आएगी, कौन से स्थान पर आएगी, आधी रात को आएगी या दिन में आएगी, कमरे में आएगी या ऑफिस में आएगी या झाड़ियों के बीच या एकांत में या भीड़ में, कहां और कब, और नहीं आएगी तो कब नहीं आएगी, किस रूप में, किस किस भेष बदल के आती है। माया एक है, रूप अनेक है उसके, वो नए नए रूप में आती है। वो कहीं रावण के भेष में थोड़ी ना आती है, वो दबे पाव आती है और ब्राह्मणों के भेष में आती है। रावण के रूप में धारण करके आया, रावण कैसे आया सीता के पास? ब्राह्मण रूप में आया, साधु वेश में आया, और आवाज भी मारीच ने कौन सा निकाला? हे राम, धोखा दे दिया सीता को, जबरदस्त धोखा हो गया। माया महाठगनी हम जानी, कबीर कहता है ये जो माया है बहुत रंग रंगीली है और बहुत ठगती है, कदम कदम पर ठगती है। उसको हमने समझा क्या और हो क्या गया? तो कुमार अर्थात, कुमारों की परिभाषाएं दी है बहुत सारी। शिव बाबा भी कुमार है ना कि नहीं? नहीं कुमार को, हाँ तो वो कुमार, अच्छा पर शिव बाबा भी कुमार ही है। सब आत्माएं गोपी का है। तो कुमार अर्थात सबसे पहली परिभाषा शक्तिशाली, कुमार अर्थात दूसरा विजयी, कुमार अर्थात नॉलेजफुल, सब बातों की जिसको जानकारी है, सब चीजें उसको पता है कि ऐसा ऐसा होता है, माया इस रूप में आती है, उसको पहले से ही पता है, पहले से ही जानकारी उसने हासिल कर रखी है। किससे? जैसे वो दिखाया है, एक पति अपने मित्र को अचानक घर लेके आता है 7:30 बजे के बाद भोजन करने के लिए, भोजन कराने के लिए। और जैसे पत्नी को पता चलता है ये कोई टाइम है, पहले कुछ बताया नहीं और अचानक अपने मित्र को लेके आया, तो वो किचन में जाके बहुत हंगामा करती है। पहले तो बर्तन पटकती है और कहते तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, पहले बताना तो चाहिए था मेरे कितने काम बाकी है, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, अभी मैं नहीं बनाऊंगी खाना वगैरह वगैरह, बहुत चिल्लाती है पति को। तो पति जाता है उसको समझाने के लिए, तो कहती ये कौन है, ये कौन नया मित्र आ गया, हमेशा किसी ना किसी को पकड़ के लेके आते रहते हो। वो कहता है ये मेरा मित्र है, इसकी अभी शादी होने वाली है, इसको डेमो दिखाने के लिए लेके आया था। डेमो किसी को समझ में थोड़ी आता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए, तो वो ही तो दिखाने लेके आया था इसको यहां पर। तो कुमार अर्थात शक्तिशाली, कुमार अर्थात ज्ञानी, कुमार अर्थात नॉलेजफुल, कुमार अर्थात विजयी, कुमार अर्थात रचना रचता और माया के भी ज्ञानी। माया कब आएगी, माया कैसे आएगी, माया कहां से आएगी, क्या उसके मार्ग है, वो सब कुछ जानना। भगवान को जानना आसान है, बहुत कठिन है। कल की मुरली में था, कोटों में कोई कोई में कोई मुझे जानता है, पर उन जानने वालों में से वो जो कोई में कोई है, उस कोई में कोई में कोई माया को जान सकते हैं, क्योंकि माया के रूप बहुत 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 सूक्ष्म है। और ब्राह्मण जीवन में जहां से ब्राह्मण जीवन चालू किया, हर दिन लास्ट तक माया का आगमन होते ही रहता है। माया आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, कहीं ना कहीं से आती रहती है, किसी ना किसी रूप से आती रहती है, कहीं ना कहीं टेम्पटेशन हो ही जाता है, कुछ और उसके रूप बदलते हैं। और हर व्यक्ति भले माया के बारे में कितना भी पढ़ ले और जान ले, जब तक खुद नहीं गुजरता कई बार उसका वो रूप उसको समझ में ही नहीं आता है। दूसरे उसको कहते हैं कि हाथ मत डालो, जलता है जलता है जलता है, उसको विश्वास ही नहीं होता है। समझ में तो आता है जलता है, पर जब तक खुद हाथ नहीं डालता ना, तब उसको झटका लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक, तो ही सुधरता है। इसलिए ये युद्ध लंबा चलता है, एक दिन में खत्म नहीं होता, ये युद्ध चालू ही रहता है, चालू ही रहता है, चालू ही रहता है, अंत तक चालू रहता है ये युद्ध। तो कुमार अर्थात विजयी, कुमार अर्थात नॉलेजफुल। इसके लिए सबसे पहले तो ये माया को समझना है, कॉन्सेप्ट, ये माया है क्या, कहां से आती है, कैसे आती है, क्या रूप है, कौन कौन से टेम्पटेशन किस किस समय आते हैं। हो सकता है 24 घंटे में 23 घंटे और 50 मिनट कोई माया नहीं, केवल 10 मिनट के लिए माया आती है, पर वो 10 मिनट बाकी सभी समय को नष्ट कर देती है, इतना उसका प्रभाव है, इतनी वो शक्तिशाली है। इसके लिए उसको समझना है, माया जीत, माया पति, भगवान माया पति है, और हमको क्या बनना है, माया जीत। ये सबसे पहली परिभाषा है कुमार की। दूसरा, कुमार अर्थात सालिम बुद्धि, कुमार अर्थात सालिम बुद्धि, सालिम अर्थात मैच्योर्ड, सालिम अर्थात शक्तिशाली, परिपक्व, परिगल्भता, सालिम बुद्धि है। और यहां पर बाबा ने कंपैरिजन किससे किया है, गृहस्थियों से। अदर कुमारों को क्या होता है, क्या होता है, चिंताएं होती है, जिम्मेदारियां होती है, और कुमार अर्थात स्वतंत्र, गृहस्थी अर्थात बोझ, कुमार अर्थात स्वतंत्र, कुमारों को कोई बंधन नहीं है। पर हां, कुमार जीवन की अपनी अलग गृहस्थी है, वो दूसरी बात है, कुछ ना होते हुए भी अपनी गृहस्थी खड़ी करते हैं। और यहां बात अभी केवल कुमारों की नहीं चालू है, कुमारिया भी इसमें है, दोनों कुमार और कुमारिया। तो कुमार अर्थात कोई बंधन नहीं, कुमार अर्थात स्वतंत्र, कुमार अर्थात सालिम बुद्धि, कुमार अर्थात कोई जिम्मेदारियां नहीं। बाबा ने कहा अपना ही काम है और अपना ही बस जीवन है, बाबा के शब्द क्या है, अपना ही जीवन है, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, जन्नत में जी रहा है, और जो गृहस्थी है वो एक मॉल में एक व्यक्ति जाता है और कहता है ऐसा कोई किताब है क्या, पति घर का मालिक, हस्बैंड द मास्टर ऑफ होम। तो मॉल का व्यक्ति कहता है कॉमिक्स और जोक्स की किताबें फर्स्ट फ्लोर पर है, इधर नहीं है। ये किताबें कहां मिलती है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, यहां ये किताबें नहीं है। कई मुरलियों में, कुमारों से मुलाकात में बाबा ने ये सब बहुत सारी बातें कही है। गृहस्थी जीवन अर्थात उसमें क्या क्या करना पड़ता है, बच्चे को ले जाओ, क्या करो, टिफिन, फिर वो लेट क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर वैसा क्यों हुआ, ये सब चीजें उसमें करनी पड़ती है। और ये जो जीवन है इसमें किसी का बंधन नहीं है, जहां मर्जी चाहे उठो और जाओ। या रुकना पड़ता है किसके लिए, किसी के लिए रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई बैग भी उठाना नहीं पड़ता, ये मुरली में आया एक है ना, बड़ी बड़ी सूटकेस उठाने की जरूरत नहीं है तुमको, कुमार स्वतंत्र है, किसी की सूटकेस कुछ उठाने की आवश्यकता नहीं। किसी की टिकट भी लेने की जरूरत नहीं, अपना बैग उठाया और चल दिए, जहां जाना है वहां जाओ, एकदम स्वतंत्र। स्कूल बैग एक पति वो लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है, उसकी पत्नी बाजू में बैठी होती है मोबाइल पर, तो उसका जो मोबाइल होता है पति का ऊपर उधर फ्रिज के ऊपर रखा होता है चार्जिंग, तो वहां पर एकदम मैसेज वाइब्रेट होता है और मैसेज आता है मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर। तो उठकर जाता है, फ्रिज थोड़ी दूर होती है, मैसेज देखता है, पत्नी का मैसेज, आते समय बॉटल लेके आना पानी की, वो यहां बैठी आपकी अपनी। ऐसे हजारों जोक्स क्यों पति पत्नी पर ही क्यों बनाए, ये भी एक चिंतनीय विषय है। जितने जोक्स पति पत्नी पर बनाए उतने और कहीं पर भी नहीं बनाए, बहुत सारे बनाए लोगों लाइफ तो जो भी है, पर वो एंजॉय भी करते हैं, पर बहुत झगड़ते हैं एक दूसरे से, सब कुछ करते हैं। पर चलो जो भी है, जो उसमें चले गए तो चले गए, पर जो अभी उससे बाहर है उस जीवन से, वो उसके अंदर ना जाए, यही सबसे अच्छा है। क्योंकि उसमें भी बहुत अपने प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स सब कुछ है उसमें, पर इसमें जाना ही नहीं है, हमको निर्बंधन रहना है। क्योंकि नहीं तो यहां की चीजों का चिंतन चालू हो जाता है, चिंतन तो चलता है ना। बाइबल में एक जगह लिखा है, ही हु इज मैरिड थिंक्स ऑफ हिज वाइफ हाउ ही मे प्लीज हिम, वो ये सोचता है मेरे पत्नी को कैसे खुश करूं जिसकी शादी हुई है, और जिसकी शादी नहीं हुई, ही हु इज अनमैरिड थिंक्स ऑफ द लॉर्ड दैट हाउ ही विल हाउ आई शुड प्लीज हिम, मैं भगवान को कैसे खुश करूं। तो कुमार जीवन अर्थात सालिम बुद्धि, स्वतंत्र, निर्बंधन, कोई बंधन नहीं, ये दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा संडे की मुरली से, कुमार अर्थात तीव्र गति से जाने वाले। तीव्र गति अर्थात जो कल था आज उससे आगे और परसों उससे भी आगे, ये है तीव्र गति। कैसा है, हर चीज में तीव्र गति। कल जो अमृतवेला था उससे आज का अमृतवेला शक्तिशाली, कल जो पवित्रता की स्टेज थी उससे आज की पवित्रता की स्टेज आगे, कल जो ज्ञान की स्थिति थी आज ज्ञान की स्थिति उससे आगे, कल जो बंधन थे आज वो बंधन थोड़े कम हो जाए। हर दिन एक एक बंधन को कम करना है, इंग्लिश में कहते टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक वासना को एक एक दिन खत्म कर दो और आगे बढ़ो। जो कमजोरी कल थी आज वो कमजोरी ना रहे, आज जो कमजोरी है वो कल ना रहे, हर दिन एक एक कमजोरी एक एक वासना एक एक खामियां नष्ट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो कुमार अर्थात तीव्र गति से चलने वाले। ऐसा नहीं कि कितना महीने का उदाहरण दिया बाबा ने, छह महीना, छह महीना पहले भी वहीं थे आज भी वहीं है, चलो डोल दो कदम आगे बढ़ते चार कदम पीछे, फिर चार कदम आगे बढ़ते आठ कदम पीछे। ये प्रोसेस चालू है 10 साल से। और कहां पर है? वहीं पर है जहां थे। जो शुरुआत में यहां थे, यहां से यहां तक तो आ गए एकदम, जो ज्ञान में आए तो यहां थे, यहां से यहां तक तो आ गए, पर यहां से अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, यहीं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूम रहे। यहां जो आ गए थे एकदम भयंकर परिवर्तन हो गया था, जैसे ज्ञान में आए दुनिया को एकदम तलाकी दे दी, पूरा एकदम दुश्मनी मोल ली सबसे, एक एक से पंगा ले लिया और इधर पहुंच गए तलवार लेकर ही, अगर कोई आया तो मार दूंगा। ये यहां की स्टेज थी, पर जब आगे बढ़ते गए और यहां पहुंचे, अब कई सालों से यही है। क्यों? यहां कुछ गड़बड़ हो गई, यहां नए नए आकर्षण आ गए, यहां दूसरों को देखना चालू कर दिया, साधनों में फंस गए, ब्राह्मणों के ही मोह में फंस गए। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के मोह में फंसा है, आपसी मोह, आपसी अटैचमेंट, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये बहुत दुखी है, वो बहुत दुखी है, तुम बैठे हो मधुबन में, वो बैठी है उधर, उसका क्या करोगे? ब्रह्मा कुमार को सबसे बड़ी माया कौन सी? ब्रह्मा कुमार जीवन की और ब्रह्मा कुमारी जीवन की सबसे बड़ी माया। ब्रह्मा कुमार जीवन की सबसे बड़ी माया है ब्रह्मा कुमारी। अर्थात मोह या घृणा, दो चीजें हैं उसमें, या तो मोह में है फंसा, या तो घृणा का संबंध है, नफरत है, उसके विरोध में है, उसको देखना नहीं चाहता, वहां उसको हटाना चाहता है। या तो दूसरा संबंध है मोह वाला, आकर्षण वाला, अटैचमेंट वाला। और ब्रह्मा कुमारी जीवन की सबसे बड़ी माया, ब्रह्मा कुमार नहीं, ब्रह्मा कुमारी, या तो मोह या तो अटैचमेंट या तो घृणा, इसी में फंसा है व्यक्ति। ये बड़ा ही सेंसिटिव सेंसिटिव टॉपिक है और सत्य है, पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। या तो मोह बंधन में फंसा है कुमार, या तो घृणा बंधन में, दो ही चीजें हैं। नफरत है, घृणा है, अपोज है, विरोध है, जेलसी है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों दोनों ही माया के रूप है। ऐसे बहुत कम कुमार है जो इन दोनों बंधनों से ऊपर है। वो भी सारी रॉयल इच्छा उसमें होती है, जिससे मोह है उसको बहुत खुश करना चाहते हैं, उसको कुछ दो, उसको गिफ्ट दो, उसको कुछ ना कुछ उसको करो। वो कर रहे हैं इसलिए नहीं कि बाबा की सेवा है, परंतु इसलिए क्योंकि हमको उससे प्यार है। अतिरिक्त मोह है, लगाव है, आसक्ति है, लागत, इसलिए। तो कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले, और जितना तीव्र गति से आगे बढ़ना है उसमें एक ही सिद्धांत है, जितना तीव्र वैराग होगा उतना तीव्र व्यक्ति आगे बढ़ेगा, जितना मोह से मुक्त होगा उतना आगे बढ़ेगा, जितना निर्बंधन होगा, किसी का कोई बंधन नहीं, उतना व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो बंधनों में फंसा है, इसको फोन उसको फोन, इससे बातें उसको बातें, इसको मैसेज उसको मैसेज, आधा आधा घंटा तक बातें चालू है, सोच रहा है मैं उसके बंधनों को मुक्त, उसको बंधन से मुक्त करूंगा। क्यों करना है? उसका अपना सेंटर है, उसकी अपनी इंचार्ज है, उसके अपने स्टूडेंट है, उसका अपना जीवन है। व्हाट इज दैट टू यू? तुमको क्या करना है? उसका पति देखेगा? उसका पति है ना शिव बाबा, वो देखेगा उसको क्या करना है? डोंट इंटरफियर इन हर मैरिड लाइफ। उसके मैरिड जीवन में क्यों इंटरफियर कर रहे हो? पर कुमार सोचता है मैं उसका कल्याण ही कर दूं, उसको इतनी तकलीफ हो रही है, मैं कुछ करूं उसके लिए? फंसते जा रहा है उसमें। यहां कोई किसी का कल्याण नहीं कर रहा है, ना कर सकता है। हर एक को अपना अपना कल्याण करना है और आगे बढ़ो, खत्म। किसी का कल्याण करने गए, ये कुमारी बहुत अच्छी है, इसका कल्याण कर देता हूं, उसका कल्याण करते करते खुद ही का कल्याण हो जाएगा एक दिन। इसके लिए कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले, और तीव्र गति से आगे वो बढ़ सकता है जो किसी से भी अटैचमेंट नहीं है, ना तो ब्रह्मा कुमार से ना ब्रह्मा कुमारी से, जिसका इस संसार में कोई भी दोस्त नहीं है और जिसके सभी दोस्त है। ऑल और नन है तो सभी मित्र है, या तो किसी से कोई मतलब नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर है, सभी अच्छे है। और सबके अपना अपना पार्ट मिला है, और जो जिसको पार्ट मिला है बहुत अच्छा मिला है। किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करना है, क्योंकि वो दादी वाली बात फिर से कह रहे हैं कि मैं शिव बाबा से ज्यादा और किसी से प्यार ना करूं, और कोई दूसरा मुझे शिव बाबा से ज्यादा प्यार ना करे इस ब्राह्मण परिवार में। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। कोई मेरे ही प्यार में फंसा है शिव बाबा को भूलकर, ये भी मुझ पर बोझ है, क्योंकि मैंने ही फंसाया उसको। कुछ जरूर ऐसा कुछ किया होगा, रिस्पॉन्स किया होगा, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत बढ़ गई। तो कुमार अर्थात एक रस, अगली परिभाषा है कुमार की, एक रस, सालिम बुद्धि, एक रस, तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले। रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना। हमेशा ये सोचना, अब तक जहां मैं हूं अध्यात्म में, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको ही सब कुछ नहीं समझना, ये मील का पत्थर है, इसी को पकड़ लिया, मंजिल उधर है आगे, इसी को समझ लिया, बहुत आगे बढ़ गया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत अनुभव हो गया, इधर लाइट दिखा उधर लाइट दिखा, इधर ब्रह्मा दिखा उधर ब्रह्मा दिखा, बाबा के सर हाथ का अनुभव हो गया आज सुबह सुबह अमृत वेला, वाह वाह वाह, क्या उन्नति हो रही है मेरी। सेवा तो बात मत पूछो, हम जैसी तो सेवा ही नहीं है किसी की। मिया मिट्ठू, हमेशा ये सोचना हमने कुछ भी नहीं पाया है, अभी पाना है, अभी तो कुछ भी अनुभव नहीं किया, अब अनुभव करेंगे। वो मील के पत्थर को बैठ के पकड़ने जाना है, वो मील का पत्थर होता है ना, लोग उसमें भी लाल डाल के उसको हनुमान जी बना देते वैसे करते हैं ना, रास्ते का पत्थर होता है ना, वो हनुमान जी बन जाता है, लोग उसी को पकड़े रहते हैं। यही है, वही पूजा चालू, जा रहे थे तीर्थ यात्रा, इधर छोटे हनुमान जी मिल गए, आगे की जर्नी स्टॉप। तो कुमार अर्थात एकरस, कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले। अगली परिभाषा, कुमार अर्थात सर्व के कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। किसी का भी अकल्याण का संकल्प मन में नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से निकली हुई बद्दुआ सीधा जाकर लगेगी। यदि हमने किसी का अकल्याण चाहा तो होगा, और जो अकल्याण उसका होगा उसका परिणाम फिर हम पर होगा, क्योंकि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं है संसार की। जैसे संसार में कहा जाता है कोई अनाथ लड़की है और उस पर बहुत जुल्म सितम किए गए, उसकी बद्दुआ लगती है। कोई बेवा है जिसका पति मर गया है और उस पर जुल्म सितम किए गए, उसकी बद्दुआ बहुत लगती है। कोई मां है जिसका बच्चा मर गया है, उसकी बद्दुआ लगती है अगर उसके साथ कुछ किया तो। ऐसे संसार में बहुत सारी कहावतें हैं। वैसे हम आत्माएं संसार की महानतम आत्माएं, यदि हमने चाहा कि इसने मेरे साथ ये किया इसका भी ऐसा हो जाए तो वो होगा, और वो जो होगा उसका अकल्याण, उसका असर उल्टा हम पर आएगा। और यहां पर वो सारी बातें आती है, जादू टोना, कुछ करना किसी पर, ऊपरी हवा, ये सब चीजें प्रयोग करना, ये बहुत महापाप में गिने जाएंगे। इसके लिए बाबा के एक महावाक्य है जो मुरली चली थी, जिसका कहीं पर भी प्रिंटेड नहीं है, और जिसके लिए बाबा ने कहा था लोग तंत्र मंत्र बहुत करते, बिजनेस भी करते, बाप दादा ने टोटल में कह दिया है कि वायुमंडल को किसी भी रूप से दूषित नहीं करना, बाप के प्यार के आगे ये तंत्र मंत्र करना महापाप के भागी बनना है, ये अपने स्वमान को कम करना है। कोई करता है तो दिल से समझे और विचार करे कि मैं यह पाप करता हूं या पुण्य करता हूं। बाप दादा सब जानते हैं, इशारे से समझ ले पाप कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर जंत्र मंत्र किया तो क्या होगा, अच्छे भी है। आपको इतनी ताकत होनी चाहिए जो जंत्र मंत्र शिव मंत्र में बदली हो जाए, ये सब होगा, लेकिन आप अपने को बचा कर रखो। अगर थोड़ी कमजोरी होगी तो असर हो जाएगा, आप अपना बचाव करो। ये मुरली कहीं पर भी प्रिंट नहीं है, अच्छा 2006 की इधर चली हुई ओम शांति भवन में, केवल मधुबन निवासी, दरवाजे बंद और कोई भी नहीं। तो बहुत सारी गहरी गहरी बातें बाबा ने कुछ कुछ उसमें कही थी। तो ये सब करना, किसी को बद्दुआएं देना, किसी को बुरा सोचना किसी के लिए कि इसका ऐसा हो जाए क्योंकि इसने मेरे लिए ये किया, तो ये हो जाएगा अगर हम सोचते हैं तो, पर उसका पाप फिर हमको लगेगा। तो ब्रह्मा कुमार अर्थात किसी के प्रति भी अकल्याण का संकल्प नहीं, सभी का कल्याण हो। और बाबा ने इसमें और एक बात कही, संकल्प और कर्म एक हो और एक साथ साथ हो, संकल्प और कर्म क्या हो, एक हो और दोनों भी साथ साथ हो, ये ब्रह्मा कुमार की परिभाषा है। लास्ट परिभाषा पांचवी, ब्रह्मा कुमार अर्थात खिटखिट नहीं, न मन में न कर्म में न आपस में, किसी के साथ भी खिटखिट नहीं। खिटखिट अगर हो रही है तो वो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की टक्कर हो रही है तो जरूर अंदर ही अंदर या तो अहंकार है या जिद है, दो चीजें हो रही है, या तो जिद अपने आप को सिद्ध कर रहा है व्यक्ति या तो मैं है, इसकी वजह से खिटखिट हो रही है, संस्कारों में टकराव हो रही है। तो ब्रह्मा कुमार अर्थात कोई खिटखिट नहीं। और सबसे ज्यादा खिटखिट किसके साथ होती है ब्रह्मा कुमारों की, उत्तर दे दिया है पहले मुरलियों में आता है ना कि क्लास में आना छोड़ दिया, बाबा कहते मेरा क्या दोष है, मैंने क्या किया, मेरी मुरली क्यों छोड़ते हो, तुम्हारी वो बहन से खिटखिट हो गई पर मुझे क्यों छोड़ा तुमने, तो मुरली तो मेरी है ना, मुझे क्यों छोड़ते हो, मेरा क्या गुना। तो खिटखिट अगर जीवन में चल रही है, आपस में, मन में, कर्म में या किसी के भी साथ संबंध संपर्क में, तो सबसे पहले तो अगर दो व्यक्ति है और दोनों में खिटखिट चल रही है, उत्तर है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, अलग हो जाओ थोड़े समय के लिए, मेंटल सेपरेशन, मन से या फिजिकली भी कुछ समय के लिए एकांत में चले जाओ, वो नहीं जाना चाहते तो तुम चले जाओ, और एकांत में सारी परिस्थितियों का चिंतन करना, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, गलती किसकी है। और हमेशा हमको ये पता चलेगा कि गलती जो हुई वो शब्दों के द्वारा हुई, और गलती और झगड़ों का मैक्सिमम जो कारण है वो है हमारा टोन। 90% झगड़ों का कारण क्या है, टोन ऑफ स्पीच, एक है एक टोन में बोलना, एक है दूसरे टोन में बोलना। दो व्यक्तियों ने बोला, पहले के वजह से झगड़ा नहीं हुआ, दूसरे की वजह से झगड़ा हुआ, तो ये जो टोन है ना ये झगड़े कराता है बहुत। तो ये कुमारों से बाबा ने मुलाकात की, फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कुमार अर्थात शक्तिशाली, कुमार अर्थात विजयी, कुमार अर्थात नॉलेजफुल, किसका नॉलेजफुल, माया का नॉलेजफुल। तो अभी माया पर पीएचडी करनी है, माया पर थीसिस करना है, माया पर एमडी करनी है कि माया क्या है, कब आई, मेरे जीवन की माया क्या है, दूसरों की छोड़ो पहले मेरी अपनी माया क्या क्या है, कहां कहां मेरे जीवन में अब कब कब माया आई और कब कब उसने मुझे किस किस रूप से गिराया, और हर बार जब गिरा तो कैसी चोटें लगी। और जितनी बुलंदियों पर अध्यात्म में व्यक्ति पहुंचता है और उन बुलंदियों से जब नीचे गिरता है, जितनी ऊंचाई से कितना गिरता है उतनी गहरी चोटें भी होती है उसको। जो कम गहराई से गिर ऊंचाई से गिर रहा है उसको कम चोटें लगती है। जो जितना ऊंचाई पर चला गया है अध्यात्म में और वहां से जब गिरेगा बहुत गहरी चोट लगती है, बहुत गहरी। हड्डगुट टूट जाती है बाबा कहते हैं। इसके लिए माया को स्टडी करना, एनालाइज करना। हो सकता है माया किसी स्थान पर आती है, किसी समय में आती है और किसी व्यक्ति के संबंध में आती है। टाइम प्लेस पर्सन। हरेक की माया हरेक जगह नहीं आती है, किसी किसी को माया उसी स्थान पर आती है। बेड पर जाओ तब माया आती है, बाकी दिन भर बेड माया नहीं आती है। ऑफिस में जाओ तब माया आती है, या पर्टिकुलर व्यक्ति के संपर्क में आते ही माया आती है। वो आ गया मतलब माया चालू, वो जैसे हट जाता है छुट्टी पर चले जाता है एकदम शांति हो जाती है। व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ ना कुछ है, टाइम प्लेस पर्सन, उससे माया आती है। उसको स्टडी करना है थोड़ा सा। तो कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले, कुमार अर्थात जो कल थे उससे आज आगे और आज से कल परसों आगे, कल से परसों आगे। कुमार अर्थात एक रस, कुमार अर्थात सालिम बुद्धि, कुमार अर्थात निर्बंधन, कुमार अर्थात कोई बोझ नहीं, कुमार अर्थात विश्व कल्याणकारी, सर्व के कल्याणकारी। किसी के लिए हमारे स्वप्न में भी बद्दुआ ना निकले, स्वप्न में भी हमारे मन में किसी के लिए ये ना आए कि इसका ऐसा हो जाए, इसने मेरे साथ ये किया इसके साथ भी ऐसा हो जाए, ये इसके वजह से मैं लेट हुआ ये भी लेट हो जाए, इसके वजह से मेरा भोजन छूट गया इसको भी आज ना मिले, इसके वजह से मैं दादी को नहीं मिल पाया उसको भी दादी से नहीं मिलना चाहिए। छोटी छोटी बात है परंतु बद्दुआएं निकलती है और वो हो जाती है, तो वो उसका बड़ा गहरा प्रभाव है। उसके बाद में कुमार अर्थात सबके कल्याणकारी, कुमार अर्थात कोई भी खिटपिट नहीं, सबका क्या हो, अच्छा हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो जाए, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जो जो कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है। इसके लिए मुझे किसी के भी बंधन में फंसना नहीं है। और कोई विचार कुमारों के बारे में? करते हैं, इसका प्रभाव उन पर होगा जो कमजोर है, जो खुद शक्तिशाली है। बाबा ने कहा ना, शिव मंत्र के आगे ये तंत्र मंत्र जंत्र कुछ काम के नहीं आएगा, शिव मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। ये सारा प्रभाव उन पर होता है जो कमजोर है, जिनके संकल्प कमजोर है, जिनकी रुचि शरीर में है, जिनका ज्ञान योग में कम ध्यान है, जिनको शरीर सुख बहुत अच्छा लगता है, उन्हीं में ये भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश करती है ज्यादा। जिनका आनंद विचारों में है, संकल्पों में है, महानतम विचारों में, उनको ये सब कुछ भी प्रभाव नहीं करता है। उसके लिए हम उसको शक्ति दे सकते हैं, सकाश दे सकते हैं, जैसे संडे की मुरली में था कमजोर। वो डिपेंड करता है किस तरह का है प्रभाव और कौन है करने वाला और कैसा है करने वाला और कितनी उसको हमारे, हमने जैसे एक परिवार है और एक व्यक्ति आया जो कि ऑफिस में काम करता है और उस पार्टी में उसको पता चला कि इसने मुझे धोखा दिया है ऑफिस में, उसको भरी सभा में सबके सामने बेइज्जत करके निकाल देता है। अब ये जो व्यक्ति है इतना अपमानित हुआ, इतना अपमानित हुआ है, सोचता है अब मुझे बदला लेना है और फिर तंत्र मंत्र करता है, फिर यहां छोटी सी एक बच्ची है उसके ऊपर करना चालू करता है, कुछ ना कुछ करेगा उसके ऊपर। तो ये सब चीजें संसार में बहुत है। सभी का उत्तर एक ही है, हमारी अपनी आत्माभिमानी स्थिति, बाबा की याद, ज्ञान का चिंतन, शक्तिशाली अवस्था, अमृत वेला, बाबा से कनेक्शन, परमात्मा प्रेम, ये सब चीजें हैं तो ये कुछ भी प्रभाव नहीं करेगी। और जिसको हो गया है वो भी यही सब करे, अपने ज्ञान योग को बढ़ाना चालू कर दे, बजाय इसके कि सोचे ये कौन है, किसने किया, पता चल गया क्या करोगे? पता चल गया इसने किया तो उसको जाके पूछोगे तुमने किया? वो मानेगा कभी? अपने आप को आपको भगवान के आगे समर्पण, प्रभु प्रेम, ज्ञान चिंतन, ज्ञान मनन, ज्ञान अध्ययन, स्थिति और सारी मर्यादाएं जो है उसको स्ट्रिक्ट कर देना है। अमृत वेला, मुरली, चिंतन। ओम शांति।